एज़रा अध्याय नौ, अध्याय नौ पद एक और दो। जब ये काम हो चुके तब हाकिम मेरे पास आकर कहने लगे, ना तो इसराइली लोग, ना याजक, ना लेविय इस ओर के देशों के लोगों से अलग हुए, वरन उनके से अर्थात खनानियों, हितियों, परिजियों, यबूसियों, अमोनियों, मोआबियों, मिस्रियों, एमोरियों कैसे घिनौने काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों में से अपने और अपने बेटों के लिए स्त्रियां कर ली हैं, और पवित्र वंश इस ओर के देशों के लोगों से मिल गया है। वरन हाकिम और सरदार इस विश्वासघात के मुख्य हुए हैं। लोगों ने एज़रा के पास आकर चौंका देने वाले ये समाचार दिए। परमेश्वर ने उनसे कहा था कि जब वे इस देश में पहुंचे तब वे अन्य जातियों में से अपने बेटों की शादी के लिए लड़कियां ना लें, अथवा अपनी लड़कियों को शादी उनमें ना करें। वे अलग और परमेश्वर के लिए पवित्र लोग होंगे। इसका कारण था कि परमेश्वर मसीह के आने के लिए पवित्र वंश बचाकर रखना चाहता था, और ये डर भी था कि वे कनानी, परिजियों या अन्य देवताओं की पूजा न करने लगे। इसलिए यहूदियों के लिए अंतर जातीय विवाह मना कर दिया गया था। मेरे विचार में इस बात पर ध्यान देना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने सबके लिए यह नियम नहीं बनाया था, परंतु कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग अंतर जातीय विवाह करते हैं धर्मशास्त्र के विरुद्ध जाते हैं। ऐसा नहीं है। अंतर जातीय विवाह ना करने की आज्ञा तो परमेश्वर ने यहूदियों को दी थी, लेकिन दाऊद के परदादा ने मोआबी स्त्री से विवाह किया था और मसीह उसी वंश से था। लेकिन अन्य जातियों में विवाह करना निषेध इसलिए था कि वे उनके देवताओं की ओर फिरकर जीवित परमेश्वर को भूल जाएंगे। वे एज़रा के पास सूचना लाए, जब से तुम लोग लौट कर आए हो तुम्हारे लोग परमेश्वर की व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे हैं। वे अन्य जाति लड़कियों से विवाह कर रहे हैं, और कुछ याजक और अगुए सबसे बड़े अपराधी हैं। इसका बड़ा असर एज़रा पर पड़ा। एज़रा आया था कि उन्हें परमेश्वर की व्यवस्था सिखाएं। वो ज्ञानी और शास्त्री था। उनके साथ आने का उसका मुख्य उद्देश्य था कि वो उन्हें व्यवस्था सिखाएं। वो लोग 70 वर्ष तक बाबुल की गुलामी में थे। वे मूर्ति पूजा करते थे और परमेश्वर से दूर हो गए थे। अब 80 वर्ष बाद वे अपने देश में लौटे थे। यहां आकर वे फिर से मूर्ति पूजा की ओर जाने लगे। एज़रा इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। अध्याय 9 पद 3। ये बात सुनकर मैंने अपने वस्त्र और बागे को फाड़ा और अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोचे और विस्मित होकर बैठा रहा। मैं विश्वास नहीं कर सकता, और उसने अपने बाल नोचे, दाढ़ी नोची और कपड़े फाड़े, और वो आश्चर्यचकित होकर बैठा ही रह गया। अध्याय 9 पद 4 से लेकर 15 तक। तब जितने लोग इसराइल के परमेश्वर के वचन सुनकर बंधुआई से आए हुए लोगों के विश्वासघात के कारण थरथराते थे, सब मेरे पास इकट्ठे हुए, और मैं सांझ की भेंट के समय तक विस्मित होकर बैठा रहा। परंतु सांझ की भेंट के समय मैं वस्त्र और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा, फिर घुटनों के बल झुका और अपने हाथ अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फैलाकर कहा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते ला जाती है, और हे मेरे परमेश्वर, मेरा मुंह काला है, क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए हैं, और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंचा है। अपने पुरखाओं के दिनों से लेकर आज तक हम बड़े दोषी हैं, और अपने अधर्म के कामों के कारण हम अपने राजाओं और याजकों समेत देश देश के राजाओं के हाथ में किए गए कि तलवार, बंधुआई, लूटे जाने और मुंह काला हो जाने की विपत्तियों में पड़े, जैसे कि आज हमारी दशा है। और अब थोड़े दिन से हमारे प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है कि हम में से कोई कोई बच निकले और हमको उसके पवित्र स्थान में एक खूंटी मिले और हमारा परमेश्वर हमारे आंखों में ज्योति आने दे और दासत्व में हमको कुछ विश्रांति मिले। हम दास तो है ही, परंतु हमारे दासत्व में हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ दिया, वरन फारस के राजाओं को हम पर ऐसे कृपालु किया कि हम नया जीवन पाकर अपने परमेश्वर के भवन को उठाने और उसके खंडरों को सुधारने पाए और हमें यहूदा और यरूशलेम में आड़ मिली। और अब है हमारा परमेश्वर, इसके बाद हम क्या कहें? यही कि हमने तेरी उन आज्ञाओं को तोड़ दिया है जो तूने ये कहकर अपने दास नबियों के द्वारा दी कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम जाने पर हो वो तो देश देश लोगों की अशुद्धता के कारण और उनके घिनौने कामों के कारण अशुद्ध देश है। उन्होंने उसे एक सिवाने से दूसरे सिवाने तक अपनी अशुद्धता से भर दिया है, इसलिए अब तू ना तो अपने बेटियां उनके बेटों को ब्याह देना और ना उनकी बेटियों से अपने बेटों का विवाह करना और ना कभी उनका कुशल क्षेम चाहना, इसलिए कि तुम बलवान बनो और उस देश के अच्छे अच्छे पदार्थ खाने पाओ और उसे ऐसा छोड़ जाओ कि वो तुम्हारे वश के अधिकार में सदैव बना रहे। और उस सब के बाद जो हमारे बुरे कामों और बड़े दोष के कारण हम पर बीता है, जबकि हे हमारे परमेश्वर, तूने हमारे अधर्म के बराबर हमें दंड नहीं दिया वरन हम में से कितनों को बचा रखा है, तो क्या हम तेरी आज्ञाओं का फिर से उल्लंघन करके इस घिनौने काम करने वाले लोगों से समधियाना का संबंध करें? क्या तू हम पर यहां तक कोप ना करेगा जिससे हम मिट जाएं और ना तो कोई बचे और ना कोई रह जाए? हे इसराइल के परमेश्वर यहोवा, तू तो धर्मी है, हम बचकर मुक्त हुए हैं जैसे कि आज वर्तमान है। देख, हम तेरे सामने दोषी हैं, इस कारण कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। एज्रा की ये आश्चर्यजनक प्रार्थना दिखाती है कि उसे परमेश्वर की व्यवस्था का बहुत अच्छा ज्ञान था। वो अपने लोगों को व्यवस्था ही सिखाने आया था। उसे परमेश्वर की इच्छा और इन लोगों के लिए उसके उद्देश्य की अच्छी समझ थी। वो प्रार्थना करता है और उसके करुणामय न्याय को स्वीकार करता है। परमेश्वर ने उनके कहे अनुसार कड़ाई से न्याय नहीं किया और यहां वे फिर उसी अधर्म में लौट रहे थे। परमेश्वर, मैं क्या कह सकता हूं? हम भाग्यशाली हैं कि तूने हमें मिटा नहीं दिया और आज भी बने हुए हैं। वो लोगों के लिए परमेश्वर को पुकारता है और लोग कहते हैं हमने बहुत गलती की है। उनका यही एक उपचार था। जिन्होंने वहां की स्त्रियों से विवाह किया था उन्हें पत्नी और बच्चों को छोड़ना होगा। ये एक कठोर कदम लगता है, परंतु हर उस स्त्री को जो इसराइली नहीं थी उनसे उत्पन्न हुई संतान को भी छोड़ना होगा। उन्होंने कहा हमें थोड़ा समय दीजिए क्योंकि हम में से बहुतों ने इस विषय में अपराध किया है। उन्होंने ये सामाजिक शोधन पूरा किया। जैसे मैंने बताया कि अंतरजातीय विवाह सिर्फ यहूदियों को मना था, पर हम जो मसीही हैं उनके लिए निर्देश है दूसरा कुरिन्थियों 6:14-15। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, इसलिए आपको अविश्वासियों के साथ विवाह संबंध नहीं बनाने चाहिए। इस तरह आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। ज्योति और अंधकार की क्या संगति? 15 या विश्वास के साथ अविश्वासियों का क्या नाता? लेकिन यहां बहुत कठोर और कठिन निर्णय लिया गया था। उन्होंने सभी अन्य जाति पत्नियों को निकाल दिया और जोर की आवाज में कहा,